हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कियाना को कुछ शक ना हो ये सोचकर दीवा कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के लिए आई हुई थी। उसे आर्यांश की याद आ रही थी। ऊपर से अचानक प्रियंक भी आज दीवा से मिलने के लिए आया था। प्रियंक ने दीवा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल दी थीं। उसके हिसाब से आर्यांश बस दीवा का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो सच में दीवा से प्यार करता है तो उसे ज़रूर अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में लेकर जाएगा और सबसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। हालांकि दीवा मन ही मन खुद को यही समझा रही थी कि आर्यांश कियाना का सच अपने दादाजी के सामने लाना चाहता है ताकि उसे कियाना से शादी ना करनी पड़े, और इसी वजह से वो दीवा से दूर है। ऐसे में दीवा का वहां पार्टी में जाना आर्यांश के प्लान पर पानी फेर सकता था। दीवा मन ही मन खुद को कितना भी समझा ले, लेकिन प्रियंक की बातों के बाद वो पूरी तरह बेचैन हो गई थी। रात को जब आर्यांश दीवा से मिलने आया तब उनके बीच कुछ इंटीमेट मोमेंट्स क्रिएट हुए थे। सब कुछ हो जाने के बाद जब दोनों रिलैक्स कर रहे थे तो दीवा ने पूछ ही लिया था कि आर्यांश उसे अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में लेकर जाएगा या नहीं। अचानक आर्यांश के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने सिर हिलाया और हड़बड़ाकर कहा, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल तुम्हें दादाजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद वो वैसे भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, और ट्रस्ट मी, मैंने हम दोनों की शादी के बारे में अभी कुछ प्लान नहीं किया है। मैं शादी जैसे रिश्ते के लिए तैयार भी नहीं हूँ। आर्यांश का जवाब सुनकर दीवा को झटका सा लगा। हालांकि उसने बिना छुपाए सीधे सीधे अपने दिल की बात रख दी थी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, फिर भी दीवा को बुरा लग रहा था। दीवा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और धीमी आवाज में कहा, कौन सा मैं तुम्हें आज ही शादी करने के लिए कह रही हूँ? मेरी फैमिली तुम्हें जानती है, मैं तुम्हारी मॉम से भी मिल चुकी हूँ, और तुमने कहा कि तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की खुशी के आगे कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर बाकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने में क्या प्रॉब्लम है? जब सही वक्त आ जाएगा तब मैं खुद तुम्हें सबके सामने ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं, आर्यांश ने टॉपिक को वहीं क्लोज करते हुए कहा। इससे पहले कि दीवा कुछ और पूछ पाती, आर्यांश बेड से खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। वहीं दीवा भी अब उठकर बैठ गई थीं। क्या सच में तुम अपने दादाजी के सामने कियाना की असलियत लाने वाले हो, या मुझे बहलाने के लिए ये सब कह रहे हो? आर्यांश, आज पहली बार तुम पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा है, दीवा ने मन ही मन कहा। आर्यांश के मना करने पर दीवा बुरी तरह कश्मकश में उलझ गई थी। नव्या से मिले धोखे के बाद उसे यही डर लग रहा था कि उसे एक बार फिर जिंदगी में किसी से धोखे का सामना न करना पड़े। दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब उसे लगा कि आर्यांश बाथरूम से बाहर आ रहा है, तो वो जल्दी से लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अब वो आर्यांश से और बात नहीं करना चाहती थी। वहीं आर्यांश बाहर आया और उसने दीवा को सोया हुआ देखा तो वो उसके पास रुकने की बजाय कपड़े पहनकर वहां से चला गया। उसके जाते ही दीवा ने आंखें खोली। मुझे लगा कि तुम मेरे पास रुकने वाले हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे मना करने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए आर्यांश, दीवा ने कांपती आवाज में कहा। पहले भले ही दीवा अपने लिए डिसीजन लेने में सोच विचार करने वाली थी, लेकिन आर्यांश की बेरुखी ने उसे आधी रात को प्रियंक को मैसेज करने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और इस बारे में आर्यांश को पता नहीं चलना चाहिए, कल दोपहर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, दीवा ने प्रियंक को मैसेज किया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। आर्यांश ने दीवा की खुशी के लिए वाटर पार्क जाने का प्लान बनाया था, जहां वो अपने साथ श्रेष्ठ और वर्तिका को भी ले जाने वाला था। श्रेष्ठ ने यही सोचा था कि वो वर्तिका के सामने अपने दिल की बात वहीं पर रखेगा, लेकिन आर्यांश के प्लान पोस्टपोन करने के बाद श्रेष्ठ को वर्तिका से बात करने का मौका नहीं मिला। ऊपर से वो उसके मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ वर्तिका अपनी शूटिंग में बिजी थी। जब से समय उस दिन दीवा से मिला था उसके बाद उसने वर्तिका को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो उसके मैसेज का ठीक से जवाब तक नहीं देता था। समय नहीं चाहता था कि वर्तिका के दिल में उसे लेकर कोई भी एहसास पैदा हो। ऐसे में दीवा और उसका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। वर्तिका अपनी शूटिंग में बिजी थी। इस बीच सुबह के 11 के करीब श्रेष्ठ उसके सेट पर पहुंचा। अचानक उसे अपने सामने देखकर वर्तिका थोड़ा हैरान जरूर हुई थी, लेकिन ये उसके लिए नया नहीं था। उसने मुंह बनाकर शिकायती लहजे में कहा, आने से पहले इन्फॉर्म तो कर दिया करो, आउटसाइडर्स यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, तुमने बताया नहीं कि हम दोनों फ्रेंड हैं? श्रेष्ठ ने जवाब दिया। एक्सक्यूज मी, हम दोनों नहीं, तुम भाई के फ्रेंड हो। जल्दी बताओ यहाँ क्यों आए हो, मुझे बहुत काम है, वर्तिका ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो आज भी श्रेष्ठ से आई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहती थी। वर्तिका को डर था कि जिन फीलिंग्स पर उसने मुश्किल से काबू पाया है कहीं वो फिर से ग्रो करने लगीं तो उसके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। श्रेष्ठ ने देखा कि वर्तिका उससे नजरें चुराते हुए इधर उधर जरूर देख रही थी, लेकिन बीच बीच में वो उस पर निगाहें डाल रही थी। श्रेष्ठ ने मुस्कुराकर सार्कास्टिकली सिर हिलाया। कहीं बैठकर बात करें, श्रेष्ठ हाईब्रोज उठाकर बोला, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कहीं और जाकर वेस्ट करो। वर्तिका ने उसे तुरंत मना कर दिया था, पर मुझे तो तुमसे बात करनी है और टाइम वेस्ट करने नहीं, कोई जरूरी बात करने आया हूँ, मेरे साथ चलो, श्रेष्ठ ने इंटेंस वॉइस में कहा। इस बार उसने वर्तिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अपनी गाड़ी में ले जाने लगा। आर्यांश ने कॉल करके बातों ही बातों में श्रेष्ठ को हिंट दे दिया था कि वर्तिका आजकल किसी और में इंटरेस्ट ले रही है, ताकि उसे भुला सके। उसके बाद श्रेष्ठ अब एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्या कर रहे हो श्रेष्ठ, मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं, इन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम जानते हो ना मेरा सोशल स्टेटस क्या है, वर्तिका चलते हुए बोली। वो श्रेष्ठ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वर्तिका के इतना रोकने के बाद भी श्रेष्ठ अपनी गाड़ी के पास आकर ही रुका। उसने वर्तिका को अंदर बैठने का इशारा किया। वर्तिका उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। आज उसे श्रेष्ठ की हरकतें हमेशा से ज्यादा अजीब लग रही थीं। जो बोलना है यहीं बोलो, वर्तिका ने चिढ़कर कहा। तुम्हें सब यहीं सुनना है तो यहीं पर सुनो, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना, श्रेष्ठ ने जवाब दिया। कुछ भी करने से पहले उसने गहरी सांस ली और खुद को मन ही मन तैयार किया। अगले ही पल श्रेष्ठ वर्तिका के सामने घुटनों के बल हाथ में अंगूठी लिए बैठा था, जबकि उसके बिना कुछ कहे ही वर्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आसपास के लोग उन्हें शूट करने लगे थे, वे वर्तिका को अच्छे से जानते जो थे। क्या बेवकूफी कर रहे हो श्रेष्ठ, लोग शूट कर रहे हैं, चुपचाप खड़े हो जाओ, वर्तिका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। जिसे जो सोचना है वो सोचने दो, आज मैं नहीं रुकने वाला हूँ, फिर चाहे ये करने के बाद तुम मेरी जान ले लो या मेरे डैड मुझे बिजनेस से बेदखल कर दें, अब मैं उनके दबाव में आकर अपनी लाइफ को और स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं करने वाला उस मौली से शादी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, श्रेष्ठ एक सांस में सब कुछ बोल गया था। उसके मुंह से आखिरी लाइन सुनकर वर्तिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी।
तुम मजाक कर रहे हो ना श्रेष्ठ, देखो अगर ये किसी तरह का मजाक हुआ और तुमने फिर से किसी शर्त के चक्कर में ये सब किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, वर्तिका ने भारी आवाज में कहा। उसकी आंखें हल्की नम होने लगी थीं। श्रेष्ठ एक झटके में खड़ा हुआ और उसने वर्तिका को अपने सीने से लगा लिया था। वर्तिका के हाथ अभी भी बिल्कुल सीधे थे। वहां जो भी चल रहा था उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। ये किसी तरह का मजाक नहीं है, मैंने कहा ना आई लव यू, अगर तुम कहोगी तो आज ही तुमसे शादी कर लूंगा, पर अब मैं अपनी फीलिंग्स को और इग्नोर नहीं करने वाला हूँ, श्रेष्ठ बोला। उसका प्रपोजल काफी बेकार था और ना ही इसमें कोई तैयारी की गई थी, लेकिन हाँ श्रेष्ठ खुश था कि उसने फाइनली वर्तिका के सामने अपने दिल की बात रख दी थी। पहले जहां वर्तिका उससे अकेले में बात करने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं श्रेष्ठ के प्रपोज करने के बाद वर्तिका जल्दी से उससे अलग होकर बोली, क्या तुम सीरियस हो? श्रेष्ठ ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वर्तिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने गहरी सांस ली और फिर बिना सोचे समझे श्रेष्ठ के करीब जाकर उसके होठों को कैप्चर कर लिया था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो एक सेलिब्रिटी है और आसपास के लोग उसे शूट कर रहे हैं। वर्तिका के इस बोल्ड मूव पर श्रेष्ठ खुद हैरान था। उसे अब आसपास के लोगों को देखकर शर्माने लगी थी। कुछ लोग उन्हें शूट करते हुए लाइव चले गए थे और अब ये उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। आर्यांश ऑफिस में अपने कामों में बिजी था, तभी सार्थक उसके पास आया और उसने आर्यांश को उनका वीडियो दिखाया। मेरी बहन सच में पागल है, खैर तुम अच्छे से जानते हो कि इस वीडियो को कैसे हटवाना है, किसी भी तरीके से वर्तिका की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, आर्यांश गंभीर आवाज में बोला। सार्थक ने उसकी बात पर हामी भरी। वो वहां से जाता उससे पहले आर्यांश ने पूछा, कियाना के मामले में क्या हुआ, क्या उसे काम करने के लिए कोई अच्छा आदमी मिला? हाँ, वो मुंबई के शार्प शूटर रॉबिन से मिली थी और उसी से डॉक्टर गोयनका की किडनैपिंग की बात की है। मैंने रॉबिन से सेटलमेंट कर दिया है, वो डॉक्टर गोयनका को चोट नहीं पहुंचाएगा और उसने उनके बीच जो डील फाइनल हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भेजने का भी बोल दिया है, सार्थक ने जवाब दिया। आर्यांश के फेस पर हल्की स्माइल आ गई थी। वो खुश था कि फाइनली उसका कियाना से पीछा छूटने वाला है। उसे जो जरूरी सबूत चाहिए थे वे उसने जुटा लिए थे। आर्यांश ने कियाना की साजिशों को नाकामयाब करने के लिए तो प्लान बना लिया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे प्रियंक ने भी बहुत बड़ा जाल बिछा रखा था और जिसमें दीवा पूरी तरह फंस गई थी। दोपहर के वक्त दीवा प्रियंक से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां वो छुपकर उसके साथ आर्यांश के दादाजी की बर्थडे पार्टी में जाने की प्लानिंग करने वाली थी।